अपने ध्यान को लेकर आएंगे भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। और जहां तिलक लगाते हैं वहां खुद को देखेंगे, ज्योति स्वरूप आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, द सेंटर ऑफ द फोरहेड। विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, सिर्फ देखना है, जैसे आकाश में सितारे हैं वैसे मैं आत्मा भी एक स्टार हूं। उस स्टार को देखना है इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको यहां से हम सीख के जाएंगे। वापिस जाने के बाद दिन में बार बार करेंगे। ये हमें अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति देती है। तो सभी ध्यान से करेंगे, भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। और देखने के साथ साथ एक संकल्प करेंगे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। आई एम अ प्योर डिवाइन बींग। इस एक थॉट को क्रिएट कीजिए और इसी एक थॉट को होल्ड करना है। खुद को देखना है भ्रिकुटी के बीच आत्मा ज्योति, और देखते हुए एक ही थॉट क्रिएट करना है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। एक थॉट को होल्ड करना है। अगर कोई और थॉट आने लगे तो फिर से रिपीट करना, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। और अब देखें मुझ आत्मा से प्योरिटी की लाइट चारों तरफ फैल रही है। मुझ आत्मा से प्योरिटी एंड पावर जैसे किरणें फैलती हैं, मुझ आत्मा से प्योरिटी एंड पावर की लाइट और माइट चारों तरफ फैल रही है। अब अपने को ले चलें अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। चाहे आप अपने ऑफिस में सेवा करते हैं, चाहे आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जो आपका रोल है वहां अपने आप को देखिए। बच्चों के सामने खड़े हुए या ऑफिस में बैठकर सबकी सेवा करते हुए और वहां पर खड़े हुए भी एक संकल्प कीजिए, मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा मुझसे निकलती हुई प्योरिटी की लाइट और लाइट इस हर बच्चे की शक्ति बन रही है। I am radiating power to every soul. एक लेजर बीम की तरह मुझ आत्मा से निकलकर उन आत्माओं तक पहुंच रही है और वो आत्मा लाइट भी पावरफुल होती जा रही है। क्या हम ये कर सकते हैं रोज? यस, ओम शांति। तो क्या हम ये छोटी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं दिन में बार बार? यस, कौन कौन? ये 3 दिन में अच्छे से करते रहना, यहाँ आकर बैठे तो भी करना है। बातें तो जीवन भर की हैं, लोगों से जाने के बाद भी करेंगे। ये 3 दिन किसके लिए है? छोटी बात नहीं होती है आज के समय पर इतना समय निकाल कर आना। तो सबसे पहले तो अपने श्रेष्ठ कर्मों का शुक्रिया करना चाहिए कि मेरे श्रेष्ठ कर्म है जिसने मुझे मेरे लिए समय निकालने की प्रेरणा दी और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं लेकिन प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो दुनिया में लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं हमेशा टाइम उसी तरफ जाएगा। तो आपने किसको प्रायोरिटी दिया? आपने किसको प्रायोरिटी दिया? आपने खुद की सेहत को प्रायोरिटी दिया, वो भी कौन सी सेहत? आत्मिक सेहत, स्पिरिचुअल हेल्थ। जब तक स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं तब तक इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, रिश्ते, प्रोफेशनल हेल्थ एंड अभी तो एक और बहुत बड़ा क्राइसिस है और वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, पर्यावरण। ये सारी चीजें स्पिरिचुअल हेल्थ से क्यों कनेक्टेड हैं? क्योंकि एक लॉ है और ये सब लॉज जो आप यहाँ 3 दिन में सीखेंगे ना, ये लॉज आपको जाके हर बच्चे को सिखाने हैं। हम अगर जीवन की इक्वेशंस और लॉज सीख लें तो हम लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे हम मैथ्स कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, हमें थोड़ी पता होता है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये थोड़ी पता होता है। हमें सिर्फ क्या याद करके जाना है? हमें क्या याद करके जाना है? सिर्फ सारे इक्वेशंस करेक्ट पता होने चाहिए, लॉज पता होने चाहिए। फिर प्रॉब्लम कोई भी आ जाए, फर्स्ट लाइन पे तो पहले इक्वेशन ही लिखनी पड़ती है ना, उस इक्वेशन के आधार से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही गलत हो गई तो फिर तो उसके बाद कितने भी सप्लीमेंट लेते रहे कितने नंबर आएंगे? तो फिर हम बोलते मैंने तो इतने सारे सप्लीमेंट्स लिए, मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। फर्स्ट लाइन इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए ना। तो जीवन की इस समय बहुत सारी इक्वेशंस करेक्ट नहीं है, इक्वेशंस करेक्ट नहीं है। तो इस 3 दिन में जो भी इक्वेशन सीखते जाएंगे ना, उसको एक अलग पेज पे नोट करना, एक अलग पेज बनाना, लॉज एंड इक्वेशंस ऑफ लाइफ। इट इज लॉज एंड इक्वेशंस ऑफ लाइफ। और ये हर एक को पता होने चाहिए। वैसे हमें पता है बट हम उनको यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहां हम देखेंगे कि हर लॉ और हर इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है। और एक बार हमने सीख लिया, हम उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो फिर बच्चों को सिखाना तो हमारी वो जिम्मेवारी बन जाती है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों फाउंडेशन है? क्योंकि लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। दूसरा लॉ है, संस्कार से संसार बनता है। किससे बनता है संसार? आज दुनिया बड़ी मेहनत कर रही है कि संसार को बदलना है, कर रहे हैं ना मेहनत, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, संसार को बदलने की मेहनत कर रहे हैं। लेकिन संसार को बदलने से संसार नहीं बदलता है। किसको बदलने से संसार बदलेगा? संस्कार। तो संस्कार से संसार है, संकल्प से सृष्टि है, और संकल्प और संस्कार ही तो स्पिरिचुअल हेल्थ है। स्पिरिचुअलिटी यही तो सिखा रही है, संस्कार कैसे बदलने हैं, मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं कौन से पहले ये बता रहे हैं, और हर संकल्प कैसे श्रेष्ठ करना है। तो एक बार संकल्प और संस्कार श्रेष्ठ हो गए तो हमारी सृष्टि, मतलब माय लाइफ, माय वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, एक होता है माय वर्ल्ड और एक होता है द वर्ल्ड। माय वर्ल्ड में क्या क्या आएगा? मेरी दुनिया। उसमें क्या क्या आएगा? मेरी दुनिया में क्या क्या आएगा? हमारी दुनिया में क्या क्या आता है? मेरी दुनिया मतलब माय पर्सनल वर्ल्ड, उसमें क्या क्या आएगा? ऑर्डर में चलते हैं कि कैसे संकल्प से सृष्टि बनती है। यहां उंगली रखें एक बार, आज सुबह सीखा आत्मा कहां रहती है, यहां अंदर, बाहर नहीं, अंदर। आत्मा यहां बैठकर क्या करती है? थॉट्स 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 क्रिएट करती है। तो आज हमने सुबह एक और चीज देखी, आत्मा तीन रोल प्ले कर रही है, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार। सो दिस इज द MIS ऑफ द सोल। हर सिस्टम में एक MIS होता है, ये हमारा MIS है। क्या MIS है? माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कोई, किसने देखा आत्मा, किसने प्रूफ किया आत्मा, कैसे मानना आत्मा, हाउ टू बिलीव आत्मा। आत्मा इज अ वर्ड एंड इट इज अ वर्ड ऑफ अ स्पिरिचुअल वोकैबुलरी। जैसे मेडिकल की एक वोकैबुलरी होती है, अकाउंटिंग की एक वोकैबुलरी होती है, जुडिशरी की एक वोकैबुलरी होती है, वैसे स्पिरिचुअलिटी की भी एक वोकैबुलरी होती है। आपको आत्मा वर्ड यूज नहीं करना, आप एनर्जी वर्ड यूज कर लो, आपको जो वर्ड अच्छा लगे उसको यूज करो, बट इम्पोर्टेंट है ये पता तो होना चाहिए मैं हूं कौन। तो कैसे पता चले कि मैं आत्मा हूं? सिंपल बात है, जब हम सोच रहे हैं तो कोई एनर्जी सोच रही है ना। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उसको बोलो ब्रेन दिखाओ, या किसी प्रोफेसर के पास जाइए बोलो ब्रेन दिखाओ, दिखा सकते हैं ना, दिखा सकते हैं, मॉडल होगा पूरा ब्रेन का, वो ऐसे दिखाएंगे ये है, ये है, ये है, सब कुछ दिखा देंगे। पूरा ब्रेन देखने के बाद उनको बोलो इसमें माइंड दिखाओ, दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? ब्रेन दिखाएंगे, ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये है, ये है, इसके अंदर माइंड दिखाइए, दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि ब्रेन फिजिकल है तो इन आंखों से दिखाई देता है। माइंड एनर्जी है। किसी को प्रूफ चाहिए कि माइंड है? एनीबडी वॉन्ट्स प्रूफ कि माइंड है? किस किस को प्रूव्ड है कि माइंड है? कैसे प्रूव्ड है, कैसे पता है? सारा दिन चलता है, नहीं चलाना चाहो तो भी चलता है, रात को सोना चाहो तो भी चलता है। तो वो कौन चल रहा है? वो थॉट्स की एनर्जी है, वो जो चलती जा रही है, इसको ही आत्मा कहते हैं। फिर एक बार हमने थॉट्स क्रिएट कर ली, फिर हम उसको डिसीशन लेते हैं। तो जब मैं आत्मा डिसीशन ले रही हूं उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं। अभी किसी को प्रूफ चाहिए इंटेलेक्ट है? नहीं। अगर कोई राइट डिसीशन नहीं लेता है तो कहते इसकी बुद्धि मारी गई है, इसकी बुद्धि को ताला लग गया है, इसने अपने विवेक को मार दिया है, दबा दिया है। तो उसने कोई अपने ब्रेन के किसी हिस्से को तो दबाया नहीं है, उसने अपनी कॉन्शियंस को दबाया है। तो वो कॉन्शियंस फिजिकल नहीं है, वो एनर्जी है, तो वो ही आत्मा है। और फिर एक बार मैंने थॉट्स क्रिएट कर ली, डिसीशन ले लिया, मैंने उसको कर्म में ले आया और बार बार वो रिपीट किया कर्म, तो मेरे संस्कार बन गए। तो हम क्या कहते हैं, ये पुण्य आत्मा है, ये पाप आत्मा है, ये महात्मा है, ये धर्मात्मा है। मतलब हम आत्मा की क्वालिटी के हिसाब से टाइटल दे रहे हैं। तो संस्कार भी किसके हुए, किसके हुए संस्कार, आत्मा के हैं, ब्रेन के नहीं है। ब्रेन का सबका आइडेंटिकल पार्ट्स हैं सबके, लेकिन आत्मा के संस्कार सबके डिफरेंट हैं। तो इसका एक मॉडल क्रिएट करेंगे कि ये बॉडी एक रोबोट है। आजकल देखते हैं ना हम, रोबोट चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं घर के भी, तो वो बॉडी एक रोबोट है, ब्रेन एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग जैसे होगी, रोबोट वैसे ही चलेगा, बैठेगा, काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने वाला ऑपरेटर कौन है, वो ऑपरेटर है कौन, बोलते जाइए, मैं आत्मा, मैं आत्मा, आई द बीइंग, आई द एनर्जी। मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है, आई द सोल इज क्रिएटिंग अ थॉट, मुझे प्यास लगी है। इंस्ट्रक्शन विल गो टू द ब्रेन, ब्रेन विल प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन, हैंड विल गो देयर एंड आई विल ड्रिंक द वाटर। हाथ ने पानी नहीं पीना, किसने पानी पीना, मुझे पानी पीना है, मेरे हाथ ने नहीं पीना, मुझे प्यास लगी है। हु इज दैट मुझे जो कह रहा है कि प्यास लगी है, वो मैं आत्मा। अब उसको कोई भी शब्द यूज करिए, आत्मा, सोल, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, लाइट, पावर, एनर्जी, एनी वर्ड, एनी वर्ड, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि मैं वो एनर्जी हूं। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, फिर मेरा नाम है, मेरा रोल है, मेरी पोजिशन है, मेरे रिश्ते हैं, मेरा रिलीजन है, मेरी नेशनैलिटी है, मेरा एड्रेस है, लोकेशन है, प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, लंबी लिस्ट है, लेकिन वो लंबी लिस्ट मेरा है। क्या है वो लंबी लिस्ट, वो मेरा है, वो मैं नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, प्रॉब्लम कब आई, जब हमने उस पूरी लंबी लिस्ट को क्या बना दिया, मेरी आइडेंटिटी, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इवन जेंडर मैं नहीं हूं, इवन जेंडर मैं नहीं हूं। जेंडर इज द जेंडर ऑफ द, इट इज द जेंडर ऑफ द बॉडी। आत्मा, आज मैं आत्मा इस शरीर में हूं, इस शरीर से निकलेगी एनर्जी, बिकॉज एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो डेथ मीन्स कौन डिस्ट्रॉय हुआ, डेथ मीन्स कौन डिस्ट्रॉय हुआ, बोलो, मेरी बॉडी। यहां से तीन दिन में से हमने वोकैबुलरी सीख के जाने हैं, क्योंकि वो सोचने की वोकैबुलरी होती है, एंड जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम फील करेंगे। तो डेथ मीन्स कौन फिनिश हो गया, मेरी बॉडी। मेरी डेथ कब होगी, मुबारक, आपकी तो कभी मृत्यु ही नहीं होने वाली है, पूरी दुनिया मृत्यु के सिर से जीते। वी डोंट डाई, पंडित जी आते हैं घर पे, पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कह रहे हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम कहते हैं वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, नहीं, मर गए नहीं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाश। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, energy cannot be created, cannot be destroyed, it will only change, leave one costume, enter another costume. To ab hum aaj se ageless, timeless, eternal. To sharmana nahi, koi puche aapki age kitni hai, to kya bolenge, kitni age hai, kitni age hai, wo ye 30 40 50 kiski age hoti hai, meri body ki। तो कभी नहीं बोलना आई एम 30, आई एम 40, यू आर नॉट, यू आर एजलेस, इटर्नल, टाइमलेस। इतनी बेसिक, अभी कितनी सिंपल लग रही है ना ये चीज, हम कहते हैं हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जी तो नहीं रहे थे इस कॉन्शियसनेस से, जी तो नहीं रहे थे। अपनी सारी चीजें जो मेरी थी उसको अपनी आइडेंटिटी बना दिया, उसमें फिर मैं अलग, आप अलग, ये अलग, वो अलग, धर्म के नाम पे युद्ध चल रहे हैं, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार दिया, रिलीजन ये तो नहीं सिखाता। तो क्योंकि हमने धर्म, किसका धर्म, किसका धर्म होना सीखना था, आत्मा का धर्म। धर्म मीन्स ड्यूटी, धर्म मीन्स क्वालिटी। पानी का धर्म क्या है, शीतलता देना। मुझ आत्मा का धर्म क्या है, क्या धर्म है मुझ आत्मा का, अब लिख लें छोटी सी लिस्ट, मेरा धर्म क्या है, मेरा मतलब मुझ आत्मा का धर्म क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है। क्या है धर्म? सेवन संस्कार्स, ये सब ना अलग से नोट्स रखते हैं ताकि ये तो याद हो जाने चाहिए तीन दिन में। मुझ आत्मा का धर्म क्या है, क्या सीखा आज सुबह, सेवन क्वालिटीज। फर्स्ट, प्योरिटी, पवित्रता। मैं आत्मा पवित्र, पवित्र मतलब प्योर, फ्लॉलेस, परफेक्ट, बेदाग, पवित्र, डिवाइन, ये मेरा धर्म है। फिर पवित्रता होगी तो शांति अपने आप आ जाएगी, तो नेक्स्ट इज पीस। और शांत रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, सो नेक्स्ट इज पावर, शक्ति। पहले पवित्रता, फिर शांति, फिर शक्ति, और ऐसे होंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पी, मतलब सुख है मेरा अगला संस्कार चौथा। और सुखी रहेंगे तो हमारे से कौन सी वाइब्रेशन सबको जाएगी, अच्छी वाली एनर्जी जाएगी, वो होगा प्यार, लव। और इतनी अच्छी स्थिति होगी तो अपने जीवन का कोई भी क्वेश्चन किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा, अपनी विजडम ऑलवेज एक्टिवेटेड होगी। इसलिए हमारा छठा संस्कार है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज मतलब बाहर की दुनिया की नॉलेज नहीं, वो तो बाहर से ही लेनी है, बाहर की दुनिया की नॉलेज बाहर से लेनी है, लेकिन मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो ज्ञान हर आत्मा के पास है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। एंड जब इतना सब कुछ होगा तो मुझ आत्मा का मूल संस्कार बन जाएगा आनंद, ब्लिस। आनंद मींस अति इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स पर डिपेंडेंट नहीं। इसको एक बार रिपीट करेंगे सातों को, कौन सा मेरा धर्म, पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, प्यार, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा का धर्म है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, द पर्पस ऑफ माय लाइफ इज मेरा धर्म मेरे हर कर्म में आना चाहिए। जिस दिन हमारा धर्म हमारे कर्म के साथ अलाइन हो गया, उस दिन हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी, कैसी बन जाएगी, उसको कहेंगे सत्योगी आत्मा, डिवाइन, परफेक्ट। इस समय हम में से किस किस को खुशी चाहिए और शांति भी चाहिए और प्यार भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, तो वो जो सातों चीजें हैं वो मैं हूं की बजाय क्या बना दी कंडीशनिंग दुनिया में, मुझे चाहिए। क्यों चाहिए फील हो रहा है, क्योंकि वो सातों गुण तभी एक्सपीरियंस होंगे जब हम उसको कर्म में लेकर आएंगे। हम स्ट्रेस से कर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम एंगर से कर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम हर्ट से कर्म क्रिएट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेशन से कर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो हम अपने धर्म को कर्म में नहीं ला रहे हैं, तो वो वाले संस्कार क्या हो गए हैं, किसी संस्कार को यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाम हो गया। किसी संस्कार को यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है, और उसकी जगह कौन से संस्कार आ गए, वो सारे संस्कार। अब ये तीन दिन में हम क्या सीखने वाले हैं, कि ये जो मर्ज्ड हो गए हैं इनको हमें क्या करना है, इमर्ज करना है, और जो इमर्ज हो चुके हैं उनको क्या करना है। जैसे एक शेल्फ है जो रसोई में खाना बनाते हैं, एक शेल्फ है, बहुत सारी शीशियां हैं, आप रोजमर्रा के अपने खाने में कौन सी इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं। अगर आप मिर्ची वाला खाना बना रहे हैं तो आपकी मिर्ची की शीशी आगे होगी, आपकी गुड़ की शीशी पीछे होगी बिल्कुल, क्योंकि आप हर खाने में क्या डाल रहे हैं, मिर्ची डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शीशी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी और फटाफट से हाथ जाएगा, डालेंगे, खत्म, सोचना भी नहीं पड़ेगा डाले न डाले कम डाले, फिक्स्ड है, कर्म में वो आने वाला है। फिर एक दिन हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई आपको तो अपनी डाइट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अब मिर्ची की शीशी को कहां करना पड़ेगा, पीछे, और थोड़ी अच्छी अच्छी शीशियों को क्या करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आए हैं 3 दिन शीशी चेंज करने के लिए। आजकल कौन सी शीशियां आगे आई हुई हैं, कौन सी शीशियां आगे आई हुई हैं, स्ट्रेस, गुस्सा, निंदा, चिंता, डर, जेलेसी, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, वो लंबी लिस्ट, और इतनी आ गई है वो शीशियां आ गए कि सब लोग उनको नॉर्मल बोलते हैं, कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर नॉर्मल, फियर नॉर्मल, स्ट्रेस के बिना काम कैसे होगा, गुस्से के बिना काम नहीं होता। तो हमने कहा खाना तो इसके बिना बन ही नहीं सकता, और इतना खाना बनाया उसके साथ, इतना बनाया, इतना बनाया कि आज हाथ उठाना पड़ रहा है कि खुशी चाहिए, मतलब मुझे भूल ही गया पीछे कोई शीशी थी। और कई बार नहीं होता शीशी बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो, हम कहते खत्म हो गया, है ही नहीं घर में, लेकर आनी है। हमारा वही हालचाल चल रहा है आजकल, वो सातों संस्कार जो हमारे हैं, हम अपना हाथ उठाते हैं कि मुझे ये चाहिए, आज के बाद हाथ नहीं उठाना, मुझे ये चाहिए नहीं, मैं ये हूं, लेकिन ये मुझे एक्सपीरियंस कब होगा, जब मैं उसको सब्जी में डालूंगे। कैसे डालेंगे, कैसे लेकर आएंगे उसको कर्म में। अभी संस्कार को कर्म में कैसे लेकर आएंगे, अभी अभी किसी ने कुछ किया आपके अनुसार नहीं था, कहना नहीं माना किसी ने, या काम नहीं किया, बहुत इजी है फटाफट से गुस्सा कर दिया, जैसे गुस्सा किया तो कौन सी फीलिंग एक्सपीरियंस हुई, क्रोध मैंने किया, डांटा मैंने उनको, लेकिन किसको वो एनर्जी पहले फील हुई। तो जो संस्कार को हम यूज करेंगे वही हमारा एक्सपीरियंस बनेगा। और लॉ क्या था, संस्कार से संसार बनेगा और संकल्प से सृष्टि बनेगी। तो अब आप फिर यहां उंगली रखें, मैंने सिर्फ एक बार गुस्सा किया, किसी को डांटा या चिढ़ के बोला या इरिटेट होकर बोला या इम्पेशंस क्रिएट करके बोला, यहां बोला, यहां, और जरूरी भी नहीं है वर्ड्स में बोला, सिर्फ सोच 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 में गुस्सा कर लो किसी को, तो कहां क्रिएट हुआ, ये स्पिरिचुअल हेल्थ में वो वाला संस्कार क्रिएट हुआ। अब जैसे मैंने यहां गुस्सा क्रिएट किया, मेरी फीलिंग वैसी वाली हो जाएगी। तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स विद आर थॉट्स इज आर फीलिंग्स, इमोशनल हेल्थ। तो मेरे संकल्पों से पहले मेरी इमोशनल हेल्थ बनती है। तो जब हम बोलते हैं टुडे आई एम नॉट फीलिंग गुड, या आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं, मतलब हमने कोई अच्छे थॉट्स आज क्रिएट किए थे। और जिस दिन हम अच्छा फील नहीं कर रहे, हम फीलिंग को नहीं चेंज कर पाएंगे, हमें थॉट को चेंज करना पड़ेगा, मैं क्या सोच रही थी आज सुबह। इसलिए लोग कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, आज दिन कैसा बीत रहा है, मतलब सुबह सुबह का पहला संकल्प क्या था, आज दिन की शुरुआत कैसे की थी। तो यहां से फर्स्ट चीज क्या क्रिएट हो रही है, इमोशनल हेल्थ। अब इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो कभी ना कभी वो क्या बन रही है, एक मेंटल हेल्थ इश्यू। तो वो भी कहां से क्रिएट हो रहा है, यहां से क्रिएट हो रहा है। यहां जो थॉट्स क्रिएट हो रही है उसकी वाइब्रेशन कहां रेडिएट होती है, यहां से एनर्जी कहां जाएगी सबसे पहले, करिए करिए हाथ रखिए, कहां जाएगी सबसे पहले, इस बॉडी के ऊपर। हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स का सबसे पहला असर किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरे शरीर के ऊपर। डांट उसको रहे हैं, लेकिन शरीर किसका अफेक्ट हो रहा है? बोलते जाइए, रिकॉर्ड होता जाएगा, कैमरे पे नहीं, आप पे रिकॉर्ड होना है। डांट उसको रहे हैं, किसके शरीर पर असर पड़ रहा है? बोलिए अच्छे से, किसके शरीर पर असर पड़ रहा है? हमारे नहीं बोलना, बोलो मेरे। जो डांट खा रहा है उसके शरीर पर असर पड़ रहा है? उसके असर नहीं पड़ेगा, इतनी जोर से उसको डांटा उसके शरीर पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दो हाथ इधर करो, इस पर रखो, आप डांट रहे हो। जैसे ही आप डांट रहे हो, किसके शरीर पर असर पड़ रहा है? आपके शरीर पर असर पड़ रहा है। यहां वो है जो डांट खा रहा है, डांट जो खा रहा है उसके शरीर पर असर पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम इस साइड पे भी तो हो सकते हैं जो डांट खा रहे हैं, कभी कभी हम इस साइड पे हैं, कभी कभी हम इस साइड पर हैं। जो डांट खा रहा है उसके शरीर पर असर पड़ेगा? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, किस पे डिपेंड करता है? डांट खाने वाले के शरीर पर तब असर पड़ेगा अगर डांट खाने वाले के मन ने, हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो वाइब्रेशन है, वो किस तक पहुंच रही है? पहले यहां पहुंची, अब कहां पहुंच रही है? अगर मैं थॉट क्रिएट कर रही हूं, इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे भी कोई करता है, इन्होंने सबके सामने मुझे डांट दिया, थॉट 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 थॉट, वाइब्रेशन एनर्जी, सबसे पहले यहां हुआ असर, सेकंड यहां हुआ असर, अब ये कहां भेज रहा है? इसके बाद ये कहां जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। उससे पहले ये जाएगा उन तक जिनके लिए हम सोच रहे हैं, रिलेशनशिप्स सोच से बनते हैं, वर्ड्स और बिहेवियर से नहीं। किसी से हम बहुत प्यार से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, अच्छा बिहेव करें, लेकिन सही नहीं सोचें तो रिश्ता मजबूत नहीं होगा। अगर किसी को अपना कोई भी रिश्ता थोड़ा सा भी चेंज करना है, वो हम शाम को देखेंगे, सिर्फ दोनों में से एक को अपनी सोच को चेंज करना है। तो यहां से क्या क्रिएट हुआ? मेरे रिलेशनशिप्स। फिर यहां से जो हमारा प्रोफेशन है उसका सारा काम तो यहीं से हो रहा है, तो हमारी प्रोफेशनल हेल्थ यहां से क्रिएट हो रही है। फिर ये मेरी जो वाइब्रेशंस है ये वायुमंडल में फैल रही है, मतलब एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब मेरे घर का वातावरण, एनवायरमेंट मतलब मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का वातावरण, लेकिन एनवायरमेंट मतलब द अर्थ, द प्लैनेट का एनवायरमेंट। किस किस को अनुभव है कि हमारी वाइब्रेशंस प्लांट्स पे असर करती है? सुना है या कभी कुछ देखा है? नहीं देखा होगा तो जाकर देखना, करके देखना इसको। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने फोटो भेजी, क्लास में आते हैं वो दो प्लांट्स, ऐसे ही दोनों मार्केट से लेकर आए थे एक दिन, सेम ही थे, जैसे घर में ब्यूटिफिकेशन के लिए रखते हैं ना प्लांट्स, छोटे छोटे दो प्लांट्स। तो उन्होंने एक प्लांट को मेडिटेशन रूम में रख दिया और एक प्लांट को नॉर्मल ड्रॉइंग रूम में रख दिया होगा, नॉर्मल, बिना कुछ उसका कुछ थॉट नहीं था उसके पीछे, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। थोड़े दिन के बाद जो मेडिटेशन रूम में था वो, और जो दूसरे रूम में था वो नॉर्मल, कुछ किया नहीं उसके ऊपर फोकस्ड सोचना या फोकस्ड उसके ऊपर मेरे, कुछ नहीं, सिर्फ वायुमंडल ऑफ द रूम इन द सेम हाउस, इन द सेम हाउस। अब आप दो प्लांट्स की जगह अपने बच्चों को रख दो वायुमंडल में, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वायुमंडल एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 2020 एक वायरस आया, फिजिकल था, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लोग बीमार हुए एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा आत्माओं ने शरीर पे छोड़ा, लेकिन जिनको कोविड हुआ भी नहीं उन्होंने एक वायरस जरूर सबने क्रिएट किया, वो कौन सा था? फियर। जब पांच खंडों में 1.5-2 साल तक करोड़ों करोड़ों आत्माएं कहेंगी कोविड है, डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही, चिंता तो होगी होगी होगी। आप सोचो सृष्टि का वायुमंडल क्या बन गया उस 2 साल के अंदर। द एयर चेंज्ड, द वॉटर चेंज्ड, पानी बदल गया, क्योंकि पानी वाइब्रेशंस को बहुत फास्ट अब्सॉर्ब करता है। इसलिए हम पानी के साथ क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पानी में हम अपना मंत्र बोलते हैं, फिर उसको खाने पे डालते हैं, फिर उसको शुद्धिकरण के लिए कमरे में डालते हैं। व्हाई वाटर? क्योंकि पानी सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है शब्दों को। 2 साल बीमारी, बीमारी के लिए क्रिएट किया डर, चिंता, इनसिक्योरिटी, आने वाला समय क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, फिर डिजीज, डिजीज की वजह से डर, फिर इतनी सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ा और उसकी वजह से ग्रीफ। 2 साल ऑल ओवर द वर्ल्ड जब ये क्रिएट हुआ, एनवायरमेंट चेंज्ड, वायुमंडल बदल गया, प्रकृति बदल गई है उसके बाद। और वायुमंडल में जो डर आया, कोविड तो खत्म हो गया लेकिन डर सृष्टि से नहीं गया। और इसीलिए आप देखें कोविड के बाद फियर एक प्रिडोमिनेंट इमोशन बन चुका है, और वो फिर किसका रूप ले लिया, पैनिक, एंजाइटी अटैक। सबसे ज्यादा किसको हुआ, बच्चों को। क्यों हुआ? इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, इमोशनल इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, तो पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ इश्यूज कैसे राइज हो गए? क्या कनेक्शन था उसका कोविड के साथ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए वायुमंडल, तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम कहते बच्चों को स्ट्रांग बनाने, कैसे बनाएंगे? कोई दवाई तो है नहीं देने के लिए इसके लिए। बच्चों को स्ट्रांग बनाने का, चाहे घर में चाहे हमारे कैंपस में, एक ही तरीका है, वायुमंडल। और वायुमंडल को स्ट्रांग कौन बनाएगा? अब उंगली रखो उस पे, वायुमंडल को कौन स्ट्रांग बनाएगा? बोलो मैं। मैं कैसे बनाएंगे? अपनी हर सोच पर ध्यान रखकर, अपने हर कर्म पर ध्यान रखकर, अपने हर संस्कार पर ध्यान रखकर। तो पानी इन्फ्लुएंस हो जाता है, पौधे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पशु पक्षी तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं। जिनके घर में पेट्स होंगे उनको पता होगा कि घर का वायुमंडल उन पर असर करता है, करता है या नहीं करता? हाँ। तो मनुष्य आत्मा इतनी हाई एनर्जी है कि उस आत्मा की स्थिति से संसार बनता है। तो जब हम आत्माएं परफेक्ट थी, प्योर थी, डिवाइन थी, तो ये सृष्टि सत्युग थी। और जब प्योर थी, डिवाइन थी, परफेक्ट थी, तो बॉडी कैसी थी? बॉडी कैसी थी? जब आत्मा प्योर एंड परफेक्ट होगी तो बॉडी कैसे होगी? उसको कहते हैं निरोगी कंचन काया। और इसीलिए आज दिन तक जब देवी देवताओं की मूर्ति स्थापन करते हैं, अगर इतनी भी एक इतना इतना भी स्क्रैच होगा ना, तो मूर्ति नहीं स्थापन करते। क्यों? देवताओं का शरीर परफेक्ट था, खंडित नहीं था। क्यों भाई, उनको क्यों बीमारी नहीं होती थी? क्योंकि उनकी एक भी वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट नहीं थी। तो अगर हमने अपने शरीर को परफेक्ट बनाना है तो हमें कहां ध्यान रखना है? यहां। तो सत्युग मतलब आत्मा परफेक्ट, सत्युग मतलब बॉडी हेल्थ परफेक्ट, सत्युग मतलब ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स हार्मनी में, एंड स्वर्ग मतलब वायुमंडल कैसा होगा? सतो प्रधान। ऐसी दुनिया क्या, ऐसी दुनिया थी या ऐसी दुनिया आनी है? क्या कहेंगे, ऐसी दुनिया थी या ऐसी दुनिया आनी है? बताओ बताओ क्या करना, ऐसी दुनिया थी या ऐसी दुनिया आनी है? आनी है ना, थी तो सही, लेकिन आनी है या नहीं आनी है? आनी है। और लानी किसने, आएगी कैसे? ऐसे तो आ ही नहीं सकते, ऐसे प्रकट तो हो ही नहीं जाएगी कहीं से, क्योंकि लॉ क्या है, संस्कार से संसार। लॉ को रिमेंबर करना है, सत्युग आना है, सत्युग लाना है। कैसे लाना है? संस्कार से संसार। तो अगर मुझ आत्मा ने वो 7 संस्कारों को यूज किया अपने कर्मों में, तो मुझ आत्मा ने सत्ययुग लाने में कंट्रीब्यूट किया, और अगर मुझ आत्मा ने वही पुराने संस्कारों से चलते गए तो मुझ आत्मा ने कलयुग को और स्ट्रांग बनाने में कंट्रीब्यूट किया। कौन सी साइड पर खड़े होना है? दो टीमें इस समय सृष्टि पर, दो टीमें इस समय, कौन सी साइड पर खड़े होना है? इतना टाइम थोड़ी लगेगा ये सोचने में, कौन सी साइड पे खड़े होना है? एक साइड कलयुग है, एक साइड सत्ययुग है, कौन सी साइड पे खड़े होना है? सत्ययुग। पर सत्ययुग वाली टीम बहुत छोटी होगी, और कलयुग वाली टीम कौन सी साइड पे खड़े होना है? कौरव 100, पांडव 5। कौरव बड़ी बड़ी आर्मी, बड़े बड़े शस्त्र, एवरीथिंग जिससे आपको लगेगा कि युद्ध जीता जा सकता है। कौन सा युद्ध, कौन सा युद्ध जीतना था, कौन सा युद्ध जीतना है? युद्ध कहां चल रहा है? कर्म क्षेत्र में ये युद्ध चल रहा है। कौरव बहुत सारे हैं, पांडव 5 हैं, लेकिन पांडव की जीत तब होती है जब पांडव किसकी श्रीमत पर चलते हैं? परम आत्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उसकी कही हुई बात पर चलते जाते हैं, तो पांडवों की अपने ही आसुरी संस्कारों पर जीत हो जाती है। तो हमें इन 7 संस्कारों को अपने बाकी नेगेटिव संस्कारों पर जीत पानी है। इसलिए देवियों को कैसे दिखाते हैं? देवियां हैं, 8 भुजाएं हैं, इतने सारे उस हाथों में शस्त्र हैं, और पैरों के नीचे कौन है? पैरों के नीचे कौन है? असुर। वो देवी कौन? मुझ आत्मा की डिविनिटी। वो असुर कौन? मुझ आत्मा की आसुरी संस्कार। और वो शस्त्र कौन से? वेपन्स ऑफ नॉलेज। वो ज्ञान को यूज करके अपने अंदर के आसुरी संस्कारों को क्या करना है? खत्म करना है। और अपने अंदर की दिव्यता को क्या करना है? इमर्ज करना है। इसके लिए हम आए हैं। तो आप रेडी सत्ययुग साइड पर शिफ्ट होने के लिए? इतना ठंडा ठंडा कैसे चलेगा? आप रेडी सत्ययुग साइड पर शिफ्ट होने के लिए? आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल? हाँ, मुश्किल है। अच्छा, क्या मुश्किल है बताओ, क्या मुश्किल है? मुश्किल तो है कलयुगी संस्कारों के साथ जीना, मुश्किल है। खुशी चाहिए के लिए हाथ उठाना पड़े ऐसा जीना मुश्किल है। एक बात माइंड पे चलनी शुरू होती है, बंद ही नहीं होती, ये जीना मुश्किल है। छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, ये जीना मुश्किल है। मुश्किल वाला तो हम जी लिए, अब कौन सा वाला जीना है? अब मौज वाला जीवन जीना है, आसानी वाला जीवन जीना है। तो सृष्टि चक्र है, सुबह दोपहर शाम रात, और रात के बाद सुबह, रात के बाद सुबह। तो हम स्वास्तिक बनाते हैं, वो 4 भाग को रिप्रेजेंट करता है, और चारों भाग इक्वल होते हैं ना। तो अभी मन में एक बार स्वास्तिक बनाए, बन गया, फिर उसमें हम बिंदी लगाते हैं। कैसे लगाते हैं बिंदी? कहां पहले लगाते हैं? कहीं भी लगाते हैं ऐसा रैंडम? नहीं, पहले कहां लगती है बिंदी? वो सत्ययुग है, क्योंकि मैं आत्मा पहले कौन से युग में थी? सत्ययुग में थी। सत्ययुग में हाथ कैसे है? स्वस्तिक का पहले वाला भाग का हाथ कैसे है? ऐसे। तो मतलब सत्ययुगी आत्मा कैसी होगी? करें हाथ, करें। सत्ययुगी आत्मा कैसे होगी? हमेशा देने वाली आत्मा, देने वाली मतलब इमोशन में देने वाली आत्मा है, क्षमा करने वाली आत्मा, बातों को खत्म करने वाली आत्मा, कंपैशन, एम्पथी, किसी ने गलती की एम्पथी, दूसरे को समझने वाली आत्मा, और कोई बहुत कुछ गलत कर रहा है उसको भी दुआएं देने वाली आत्मा। तो ये सत्ययुगी आत्मा है। तो सत्ययुगी आत्मा इज अ गिवर, गिवर, देने वाली आत्मा। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ हमेशा कैसे दिखाते हैं? गिवर। कभी भी हाथ ऐसे नहीं है, हाथ कैसे? देने वाला है। तो वो है देवी देवता, मतलब दिव्य आत्मा। वो है सत्ययुग की सिविलाइजेशन, सब देवी देवताएं, डिवाइन सोल्स। आत्मा की बैटरी कैसी थी? आत्मा की बैटरी कैसी थी? करो करो, कैसी हो गई आत्मा की बैटरी? फुल चार्ज्ड, परफेक्ट। बॉडी कैसी थी? परफेक्ट हेल्दी। प्रकृति कैसी थी? सत्व प्रधान। दुनिया उसको स्वर्ग कहती है। आज भी अगर किसी के संस्कार अच्छे हैं, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी के रिश्ते अच्छे हैं, लोग कहते हैं इनके घर में तो स्वर्ग है। सबको पता है स्वर्ग कैसे होता है? कहते हैं इनके घर में तो स्वर्ग है। बिंदी पहले इस युग में है, उसके बाद बिंदी कौन से युग में आई? नीचे वाले में आई, त्रेता युग। हाथ कैसे हो गया? मतलब देना क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। फिर तीसरा युग, बिंदी कहां गई? मतलब मैं आत्मा फिर कहां गई? द्वापर युग में गई। हाथ कैसे हो गया? करे 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 करे, कैसा हो गया? देने वाला हाथ कैसा हो गया? मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे समझो, मेरा कहना मानना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाथ ऐसे हो गया। ये है द्वापर युग। और फिर चौथा युग, हाथ कैसे हो गया? ये क्या कर रहे हैं हम? ये क्या कर रहे हैं अब हम? पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? हाथ से हम मार रहे हैं सारा दिन। किसको मारते हैं हम सारा दिन? किसको मारते हैं? किसको मारते हैं? अपनी सोच से खुद को तंग करते हैं, अपनी सोच से खुद को दुख देते हैं, फिर अपनी सोच और शब्दों से हम दूसरों को भी तंग करते हैं। ये है कलयुग। और इस समय हम हैं घोर कलयुग में। हर रोज दिख रहा है ना कोई दृश्य कि घोर कलयुग कैसे हो सकता है। ऐसा हम देखते हैं और हर एक के मन से क्या निकलता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? ये निकलता ना क्वेश्चन, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? बैटरी क्या हो गई है? बैटरी क्या हो गई है? जब बैटरी ऐसे हो जाती है, वो सातों मूल संस्कार जो मुझ आत्मा के हैं, वो शीशी कहां चली जाती है? पूरी तरह से पीछे। और कौन से संस्कार आगे आ जाते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वो आगे आ जाते हैं। एंड कलयुग मतलब ये शीशियां तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन कुछ आत्माओं के अंदर फिर वो संस्कार भी अतीत को चले जाते हैं कि उनकी कॉन्शियंस जो है वो बिल्कुल। लेकिन अगर हमें सृष्टि को बदलना है, हम उन लोगों को नहीं बदल सकते हैं। हम किसको बदल सकते हैं? हम खुद को बदल सकते हैं। और खुद को बदल के, वायुमंडल को बदल के, संसार को बदलने में हम योगदान दे सकते हैं। अब एक बार हाथ करें, वन। मैं आत्मा कहां थी? वन। फिर मैं आत्मा कहां गई? टू। फिर मैं आत्मा कहां आई? थ्री। फिर मैं आत्मा कहां गई? फोर। अब मुझे आत्मा ने कहां जाना है? वन। वेरी सिंपल। ऐसे करें हाथ। मुझे कलयुग से सत्ययुग बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ ऐसे से ऐसे करना है, ऐसे से ऐसे करना है। कोई भी बात आएगी तो ऐसे से ऐसे करना है, बस। इजी। अब तो बोलो इजी है ना? कितना इजी है। सिर्फ क्या करना है? ऐसे से ऐसे करना है। सोच को मारने से क्या करना है? देने वाला बनाना है। और ये भी करना उतना आसान नहीं है अगर हम खुद कर रहे होते, क्योंकि बैटरी क्या हुई हुई है? बैटरी क्या हुई हुई है? यहाँ तो बैटरी को खुद से चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि वायुमंडल तो हम कलयुग में रह रहे हैं। इसीलिए इस घोर कलयुग के भी अंतिम समय में बैटरी को चार्ज करने के लिए किसको आना पड़ता है फिर? क्योंकि बैटरी बैटरी से कनेक्ट होके चार्ज नहीं हो सकती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट करना पड़ता है? पावर हाउस से। इसीलिए बचपन से सुना था, जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानी होगी तो मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो कोटों में कोई, कोई में ही कोई मुझे पहचानेंगे। क्यों ऐसा? सब लोग क्यों नहीं पहचानेंगे? क्यों ऐसा? कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही पहचानेंगे, क्यों ऐसा? भगवान आए तो सबको पहचानना चाहिए ना, क्यों नहीं पहचाने जाएंगे? क्योंकि पहचानना पहली बात, फिर उनको जानना, फिर उनका कहना मानना और फिर वैसा बनना, वो कोटों में कोई ही कर पाएंगे। बाकी सब दूसरी साइड पर ही चल रहे हैं। तो ये वो समय होता है जब निराकार परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि वो शिव है उनका नाम, इसीलिए हम कहते हैं ना शिव ज्योतिर्लिंग, वो लाइट है, वो नूर है, वो ज्योति है, वो शक्ति है। मैं आत्मा हूं तो परमात्मा भी कैसे होंगे? आत्मा। लेकिन वो परम आत्मा है। परम आत्मा मतलब मैं आत्मा पवित्र हूं, वो पवित्रता के सागर है। मैं शांत स्वरूप हूं, वो शांति के सागर है। वो बड़ी आत्मा नहीं है, आत्मा बड़ी नहीं होती है। आत्मा तो एनर्जी है, लेकिन पावर में, और आत्मा और परमात्मा में एक मेन अंतर, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा देह लेकर धर्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो वो आप कल सुबह का सेशन किसी को मिस नहीं करना, किस बिल्कुल, क्योंकि पावर हाउस के बिना तो हम चार्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए कल सुबह का 7 o'clock का सेशन बिल्कुल नहीं मिस करना है। कल सुबह 7 o'clock, परसों सुबह 7 o'clock। कल पावर हाउस कौन है, परसों सुबह पावर हाउस से कनेक्ट कैसे करना है? कितना भी सारा ज्ञान सुन लो, बिना पावर हाउस से कनेक्ट किए हुए थोड़ा सा मुश्किल ही है। और पावर हाउस से कनेक्ट कर लिया, बैटरी तो अपने आप ही चार्ज हो जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। लेकिन डिसीशन आज लेना है कि मैं आत्मा कौन सी साइड पे शिफ्ट होने वाली हूं, मैं आत्मा कौन सी साइड पे शिफ्ट होने वाली हूं। तो जो भी ज्ञान आप यहां सीखेंगे, सुनेंगे, आप सबको जो यहां देखेंगे, ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर रही है। निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर उन्होंने ब्रह्मा बाबा को सिर्फ माध्यम बनाया। तो जब हम ब्रह्मा बाबा की फोटो को देखते हैं, हम लग कहते हैं ये गुरुजी है ना, वो गुरुजी भी नहीं है, वो टीचर भी नहीं है, वो इस विद्यालय का फर्स्ट स्टूडेंट है। फिर कहते हैं फोटो क्यों लगाई? फोटो इसलिए लगाई क्योंकि हम वो स्टूडेंट की फोटो लगाते हैं जो टॉपर है। आपने लगाते अपने कॉलेज में फोटो, 19 स्क्वायर में ये टॉपर, इसमें ये टॉपर, इसमें ये टॉपर। तो यहां जितने भी फोटोज देखेंगे ना, वो जो टॉप कर गए उनकी फोटो लगी हुई हर जगह। मतलब ब्रह्मा बाबा की फोटो दिखेगी और हमारी दादियों की फोटो दिखेगी, हमारे बड़े भाइयों जिन्होंने बहुत साल से 1936 से स्टार्ट किया पढ़ना, उस पर वर्क किया और 100% सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त किया। तो इसलिए फोटो है, बाकी वो गुरु नहीं है, वो टीचर नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट है। हर एक यहां स्टूडेंट है। और जो हर रोज सुबह हम महावाक्य सुनते हैं, स्टडी करते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, जो आप वापस जाएंगे, आप सेंटर पर वो स्टडी करेंगे, वो डायरेक्ट परमात्मा के ही महावाक्य हैं, जो उन्होंने सुनाए, जिसको हम ले रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। स्टडी से हर एक सोच चेंज होती है, हर एक संस्कार चेंज होता है। तो चार सब्जेक्ट हैं स्कूल के। फर्स्ट इज ज्ञान, रोज ज्ञान स्टडी करना, उसके बिना सोच नहीं बदलेगी। एक और लॉ है, अपने हर बच्चे को बता देना, कंटेंट से डेस्टिनी बनती है। कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन जो हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कंटेंट से सोच बनती है। सोच बार बार वो क्रिएट की, वो संस्कार बनते हैं, संस्कार कर्म में आ जाते हैं, कर्म से भाग्य बन जाता है। तो कंटेंट से डेस्टिनी बनती है। तो जब आप यहां आते हैं तो सबसे पहला आपका कंटेंट चेंज होता है, आप ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि 3 दिन में हम सत्योगी आत्मा बन सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। 3 दिन में तो हम सत्योगी आत्मा बनने का डिसीशन लेते हैं सिर्फ। फिर जब हम यहां से वापस जाते हैं, आप जहां रहते हैं आपके नजदीक सेंटर है, हम सब सेंटर पर रोज 1 hour के लिए स्टडी करने जाते हैं, एवरी सिंगल डे, 365 days ऑफ द ईयर। तो जैसे आपको टाइम हो, रोज आ सकें तो बेस्ट, रोज नहीं आ सकें तो जिस दिन आ सकें, तीन दिन आए, चार दिन आए, दो दिन आए, संडे आए, छुट्टी के दिन आए, लेकिन पढ़ाई जरूर शुरू करें। जैसे ही कंटेंट, हम सबका एक्सपीरियंस है, जैसे ही ज्ञान अंदर जाना शुरू होता है, अपने आप ही आधे चेंजेस तो वैसे ही आ जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। इसीलिए हमारा फर्म बिलीफ विद एक्सपीरियंस है ये कि ये जो आजकल के बच्चों को सारी इश्यूज आ रही हैं, मैं ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से है, क्योंकि कंटेंट रियली सारी डेस्टिनी चेंज कर सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, सिर्फ कंटेंट को चेंज करना है। दूसरा सब्जेक्ट है योग। योग मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन, मेडिटेशन में क्या करना है, आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करके वो शक्तियों को अपने अंदर भरना है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम सिर्फ याद करने के टाइम क्या करते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब उसमें एक पार्ट ऐड करना है, उससे कनेक्ट करके उसकी शक्ति को अपने अंदर भरना है और परमात्मा के साथ एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है। जैसे आत्मा और आत्मा के बीच में टेलीपैथी होती है, होती है ना टेलीपैथी, किसी ने एक्सपीरियंस किया टेलीपैथी है? आपने किसी के लिए सोचा, किसी और को वो थॉट। राजयोग मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में टेलीपैथी, उनके पास बात करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, कोई डिसीशन नहीं ले जा रहा उनसे पूछो, उनको बोलो मुझे नहीं आता ये, आप बताओ कैसे करना है, रिलेशनशिप विल स्टार्ट। तो वो है सेकंड सब्जेक्ट योग। थर्ड सब्जेक्ट है धारणा। धारणा मतलब जिसने ज्ञान रोज स्टडी किया और मेडिटेशन किया, उसके अंदर वो धारण होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा, इम्बाइब करना शुरू किया। तो थर्ड सब्जेक्ट है धारणा। और जिसने ये तीन सब्जेक्ट्स कर लिए, उसका फोर्थ सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है और वो है सेवा। सेवा मतलब जो मैं बन गई, मेरे से वो वाइब्रेशन सब तरफ फैल रही है, वो है सेवा। वो है सेवा। किस चीज की हम सेवा कर रहे हैं? सृष्टि परिवर्तन की सेवा हो रही है। आज की डेट लिख के रखना याद, 2025 अप्रैल। आने वाला समय इजी नहीं है, बाहर की दुनिया के हिसाब से, बाहर की दुनिया के हिसाब से मतलब आने वाला समय संसार के लिए इजी नहीं है। इस समय में अगर अचल और अडोल रहना है, हर अनसर्टन सिचुएशन में इंटरनली सर्टन एंड पावरफुल रहना है, तो फिर उसके लिए संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर लीजिए। अब जो अपने आप को कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो अपने आप को और अपनों को धोखा ही दे रहा है, क्योंकि वो संसार पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है बिना संस्कार पे वर्क करने के लिए। वो सृष्टि पर वर्क करने की कोशिश कर रहा है बिना संकल्प पर वर्क करने के लिए। इट विल ओनली गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो अगर अपने आप को ये दुआ देनी है कि मुझे सृष्टि परिवर्तन का हिस्सा बनना है, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट्स विद स्व परिवर्तन। व्हेन आई चेंज माय वर्ल्ड विल चेंज। मैं सत्योगी आत्मा बनूं तो सत्योगी संस्कार से सत्योगी संसार बनना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए हमारा योगदान सिर्फ एक ही होता है, एक घंटा रोज सुबह अपने लिए, एक घंटा रोज सुबह अपने लिए। शुरू शुरू में से लगेगा वो एक घंटा कहां से निकलेगा, वैसे ही टाइम नहीं है हमारे पास। लाखों 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 लोगों का अनुभव ये कहता है कि जब थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं और बैटरी थोड़ी सी चार्ज होनी जस्ट शुरू ही होती है, अभी फुल चार्ज नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी चार्ज शुरू हुई होती है, तो हमारे पास सडनली टाइम एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि जितनी जितनी बैटरी चार्ज होती जाएगी, सारे काम कैसे होते जाएंगे, फटाफट फटाफट, ज्यादा सोच नहीं चलेगी ना किसी चीज के लिए। गॉसिप करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हम, और ऐसे 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 करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, तो हमारे घंटों घंटों तो वैसे ही बच जाते हैं, एडिक्शन का हिस्सा नहीं बनते हैं। आत्मा कमजोर होती है तभी अडिक्ट होती है। जैसे आपने थोड़ी सी बैटरी चार्ज करनी शुरू की, आपके ये एडिक्शंस तो ऐसे ही छूट जाती हैं, मन की एडिक्शन भी और शरीर की एडिक्शंस भी। ऐसे मतलब छोड़नी नहीं पड़ती, वो छूट जाती है। अगर आप रेलिंग पकड़ के सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया तो रेलिंग को छोड़ना थोड़ी पड़ता है, वो तो पता ही नहीं चलता कब छूट गई, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, आप उनसे इस गैजेट्स को खींचने की कोशिश करेंगे या आप इनसे कंटेंट लेने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उस पर वर्क करें, लेकिन जब तक आप उनको स्ट्रेंथन करने के साथ साथ नहीं करेंगे तो वो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई और एडिक्शन की तरफ फिर जा रहे हैं। तो द स्टार्टिंग हैज टू बी फ्रॉम हू, किसने इसको शुरुआत करनी है? मुझे। आज अपने लिए गिफ्ट लिखो, अपनी कैसे करेंगे बाद में सोचना, अपनी सिर्फ डायरी में लिखो, आज से रोज का सुबह का एक घंटा मेरा अपना, कब कैसे वैसे वो बाद में, बस पहले अपने आप को एक ब्लेसिंग दे दो, आज से सुबह का एक घंटा मेरी अपनी चार्जिंग के लिए है। करके तो देखेंगे ना एक बार, जाने के बाद अपना एक्सपेरिमेंट तो करेंगे। कोई भी चीज को बिलीव नहीं करना है, साइंस ने हमको सिखाया कोई भी चीज को ऐसे बिलीव नहीं करना है, लेकिन साइंस ने हमको सिखाया एक्सपेरिमेंट जरूर करके देख लेना है। एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और रिजल्ट मिलेगा, देन इट इज योर ट्रूथ, टिल देन नो, इट्स जस्ट अ बिलीफ, तब तक वो किसी और का ट्रूथ है। लेकिन जिसने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया उसका अपॉर्चुनिटी लॉस, उसका अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो एक्सपेरिमेंट करना, यहां आप आए, चार दिन यहां रहे, आने जाने में एक 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 दिन लगाया, टोटल कम से कम 5-6 दिन का प्रोजेक्ट है जो आप आए हैं यहां निकाला, कितने घंटे हो गए वो, 24 मल्टीप्लाइड बाय 4-5, मतलब 125 घंटे से ऊपर का तो टाइम आपने निकाल ही दिया। अब आप 3 महीने के लिए एक घंटा निकालिए, विच इज ओनली 90 आवर्स, 90 घंटे और निकालिए, 3 महीने के लिए एक घंटा निकालिए। 5 दिन निकालने में तो फिर भी बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, एक घंटा निकालने में कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये 125 तब वर्थ होंगे जब हम 90 और उसको ऐड करके इसको एक्सपेरिमेंट करके देख ले। तो फिर वो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, विच मीन्स गोइंग बैक एंड कनेक्टिंग टू द सेंटर, एंड वहां जाके फिर इसको डेली स्टडी करके, मेडिटेशन 1-on-1 वहां बहने सिखाएंगे, उसको करके उतने लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लेंगे। 3 मंथ्स अगर किसी ने एक घंटा किया, उसने चार्जिंग शुरू हो जाएगी, और 3 महीने लगेंगे नहीं, आपको 1 महीने के अंदर अपने अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। फोन को चार्जर से लगाओ, ऑन करो, चार्जिंग की लाइट तो उसी टाइम शुरू हो जाती है ना, बिल्कुल उसी तरह शुरू होने लगेगा। आपको 10 दिन में लगेगा, आज मुझे ये बात पे गुस्सा कैसे नहीं आया, आज मुझे ये बात इतनी बुरी कैसे नहीं लगी, पहले तो बहुत बुरी लगती थी, अब कैसे नहीं लगी। करना नहीं पड़ेगा उसको, वो होगा, अपने आप होगा। क्यों होगा? क्योंकि बैटरी को क्या कर दिया, थोड़ा सा चार्ज। तो स्पिरिचुअल हेल्थ क्या हो गई, बढ़ गई, फिटनेस लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली संस्कार चेंज, ऑटोमेटिकली संस्कार चेंज। तो कौन अपने आप को ये एक ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है, 1 आवर, 90 डेज, 90 आवर्स। मैं पिछले वीकेंड एक ग्रुप के साथ आई थी, जब हम वापस गए तो हम रात को 11 बजे पहुंचे। तो हमारे टाउनशिप में एक बहन रहती है, कहती मैं कल सुबह से कोर्स करूंगी। मैंने कहा अभी तो 11 बज के आप आ रहे हो, आपने ऑफिस से 5 दिन से छुट्टी ली थी, घर पे बच्चे भी हैं। तो मैंने उसको रॉन्ग बोला, मैंने बोला एक दिन छोड़ दो, परसों से करो। कहती है टुमारो आई हैव टू बी देयर टुमारो मॉर्निंग, और वो अगले दिन सुबह 6:30 बजे वहां पहुंच गए, शुरू हो गए जर्नी। इट इज दैट फर्स्ट विच मैटर्स, वहां के कलयुग का वायुमंडल का रंग लगने से पहले। क्या होता है ना, यहां वायुमंडल ऐसा होता है, ऐसा लगता है हाँ हाँ कितना आसान है, मैंने तो गुस्सा, कई लोग जाने से पहले बोलते हैं हमने तो गुस्सा यहां छोड़ दिया, क्योंकि इंटेंशन बहुत प्यारी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, और संकल्प भी बहुत दृढ़ होता है, और हम सच में करना नहीं चाहते हैं, लेकिन टू रिमेंबर के हम कलयुग के वातावरण के अंदर रह रहे हैं, जहां हमारे चारों ओर के मन
क्रोध क्रिएट कर रहे हैं, जहां जो कंटेंट लोग फोन पे देख रहे हैं अब उसके अंदर भी क्रोध है, दैट ऑल्सो एड्स टू द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट। तो इसलिए ये मैजिक ऑफ फोर डेज नहीं है, ये फोर डेज एक बिगिनिंग है टू अ मैजिकल जर्नी, बट मैजिक तब है। अब सेंटर पे क्यों जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हम घर पे ही कर लेंगे, घर पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम सेंटर इसलिए जाते हैं, अब यही प्रोग्राम यही सेशन हम आपके शहर में भी कर सकते थे ना, यहां आने का फायदा क्या, इतनी दूर छुट्टी निकाल के यहां आने का फायदा क्या? वाइब्रेशन। ऐसे ही जिस सेंटर पर आप जाएंगे वापस, उसका वाइब्रेशन वो चार्जिंग करता है, वो चार्जिंग करता है। बहुत लोग जो हर साल यहां आते ही हैं, आने के बाद वापस सेंटर नहीं जाते हैं, फिर 5-6 दिन के अंदर बोलते क्या है वो सारा मधुबन का असर तो खत्म हो गया। फिर पूछने लगते हैं फिर से कब जाएंगे, मैं कहूँ अब नहीं जाएंगे, अगली बार नए लोग आएंगे, आप नहीं जा सकते बार बार। तो आप मेहमान बनकर एक ही बार आ सकते हैं, आपको फिर से आना है ना यहां पर, तो मेहमान बनकर नहीं आ सकते अगली बार। अगली बार क्या बनकर आएंगे, होस्ट बनकर आते हैं। वाइब्रेशन बहुत जल्दी असर करता है हमारे ऊपर, आपके ऊपर स्टेशन पहुंचने तक वाइब्रेशन असर कर देगा। उधर पता चले आपकी ट्रेन 6 घंटा लेट है, लेट छोड़ो कैंसिल ही हो गई आज, तो सडनली स्टेशन पे खड़े हुए इतने 300-500 लोग भरी एंड चिंता और डर ऐसा क्रिएट करेंगे, हवा ऐसी चेंज होगी कि वो थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए वायुमंडल इज द बिगेस्ट थिंग। इसीलिए परमात्मा ने जो सबसे बड़ी गिफ्ट हमको दी है, हर शहर में हर 3-4 किलोमीटर के ऊपर एक सेंटर। इजी नहीं होता इतने मकान बनाना, और चलो मकान तो बन जाए, इजी नहीं होता इतनी सारी सरेंडर्ड सिस्टर्स रोज सेंटर को संभालती हैं, ये आसान नहीं है। और वो भी एक ऐसी संस्था जो उसके लिए चार्ज नहीं करती हो, परमात्मा के कार्य के अलावा ये हो नहीं सकता। लेकिन हर 3-4 किलोमीटर में क्यों, ताकि हर एक रोज आ सके, इसलिए तो इतना सब कुछ हमारे लिए इजी हो गया है, हमें सिर्फ उसको क्या करना है, यूज करना है। अब आज की अगली इक्वेशन, हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है, हु इज द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स, हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है, हम खुद। लेकिन जब हम कलयुग में जी रहे थे तो हम नहीं कहते थे कि हम खुद क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं गुस्सा किसने दिलाया, उंगली कहां रखते हैं, करें करें उंगली, गुस्सा किसने दिलाया, वहां, मुझे दुख किसने दिया, वहां, मेरी चिंता का कारण कौन, वहां, मेरी खुशी का कारण कौन, वो भी वहां, मेरी शांति का कारण, मैं वहां जाऊंगी तो बहुत शांति मिलेगी, हर चीज वहां। तो इसको कहते हैं इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल डिपेंडेंस। इमोशनल हेल्थ किस पे डिपेंडेंट हो गई, आउटर वर्ल्ड, ये है इनर वर्ल्ड, मेरा आंतरिक जगत, और यहां जो कुछ हो रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों का हमने ब्लेम किस पर डाला, वहां, दिस इज इमोशनल डिपेंडेंस। अब चेक कर लेते हैं, फिर से दोनों हाथ यहां रखें, उनको यहां रखें जिसने कुछ गलत किया, छोटा गलत नहीं बहुत बड़ा गलत किया, किया उन्होंने किया और फिर मुझे गुस्सा आया, दैट दोनों चीजें हो चुकी हैं, ये उन्होंने किया, लेकिन वो गलत कर सकते हैं, वो कहना नहीं मान सकते हैं, वो हर रोज ये कर सकते हैं, वो बार बार ये कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? अच्छे से सोच के, उंगली रखें, उनको सामने लाएं, वो वहां गलत कर सकते हैं, वो उल्टा जवाब दे सकते हैं, वो अपशब्द बोल सकते हैं, इतनी बार कहने के बाद भी वो काम नहीं कर सकते हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, क्या वो यहां घुसकर मेरे मन के अंदर मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? यस, नो, डोंट नो, मे बी, कौन सा ऑप्शन? पक्का वो गुस्सा नहीं दिलाते? नहीं, फिर कौन दिलाता है? फिर कौन दिलाता है? तो इस इक्वेशन को क्लियर करना है। लोग स्टिम्युलस है, सिचुएशन भी एक स्टिम्युलस है, मतलब एक बात जो बाहर से आएगी और जैसे वो बात आएगी मैं आत्मा एक थॉट क्रिएट करती हूं। सपोज मैंने थॉट क्रिएट की ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये एक थॉट है। इतनी बार समझाया फिर भी ऐसे कर रहे हैं, एक और थॉट है। फिर हमने उनको कहा इतनी बार आपको समझाया आप ठीक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने चार और जस्टिफिकेशंस दे दी। अब जिद भी ये कर रहे हैं, एक तो इनको समझाओ ऊपर से ये जिद भी करते हैं, ये मेरी थॉट है। ये थॉट किसने क्रिएट की? ये थॉट किसने क्रिएट की? उंगली रखो, किसने क्रिएट की? ये अब फोटो खींचो, अपनी सेल्फी निकालो, नहीं निकालो निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उंगली यहां रखो और दूसरे से अपनी फोटो खींचो। ऐसे खींचते रहते हैं सारा दिन, अभी ये वाली खींचनी चाहिए। ये गुस्सा किसने क्रिएट किया? ये मैंने क्रिएट। किसी ने गलत बोला, हर्ट क्रिएट। कहां हर्ट क्रिएट हुई? यहां हुई। खींचो, हाँ खींच लो इसको, ताकि जिस दिन मन परेशान होगा दुखी होगा ना, फोटो निकाल के देख लेना आपने। ये एक चीज चेंज हो जाए ना तो कलयुग से सत्ययुग लाना बहुत ईजी है। लेकिन हमारी जीवन कैसे चल रही है? आप क्यों परेशान हो? बच्चों के एग्जाम है, परेशान तो होंगे ही। आप चिंता में क्यों इतना? बच्चा पढ़ता नहीं, चिंता तो होगी। कभी नहीं कहते मैं, उंगली हमेशा कहां? यहां 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 यहां, छोटी छोटी बातों के लिए यहां, और कोई बड़ी बात होगी तो वहां। ये जो हुआ ये भगवान की मर्जी से हुआ। तो मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो या तो लोगों की वजह से हो रहा है या वो ईश्वर की वजह से हो रहा है। सिर्फ एक की गलती नहीं है बस। सो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स बिहेवियर एंड कर्म नहीं ली, एंड इसीलिए आत्मा कमजोर होती गई। स्पिरिचुअल हेल्थ इट्स लाइक मौसम बदला, खांसी जुकाम आई, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मेरी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मैं अपनी डाइट को चेंज करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अगली बार आई विल बी फाइन। हमने कहा मौसम ही खराब है ना, और ऊपर से वो खांस रहे थे तो फिर मुझे खांसी तो होनी थी, तो फिर खांसते रहो, फिर कलयुग साइड स्ट्रांग हो जाता है उससे। भले मौसम खराब है, भले हमारे आसपास सारे बीमार हैं, मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है स्पिरिचुअल। और जितना कलयुग और घोर कलयुग की तरफ जाएगा, जो कि अगले कुछ सालों में बहुत अति को जाएगा, ये कलयुग अति से पहले अंत नहीं होता है। तो दुनिया को लगता है कि सृष्टि का अंत होने वाला है, प्रलय होने वाली है। सृष्टि का अंत नहीं होगा, प्रलय नहीं होगी, लेकिन कलयुगी जीवन जीने का तरीका अंत होगा और सत्ययुगी जीवन जीने का तरीका शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अति को तो जाएगा ही, अति को तो जाएगा ही। और 2025 देखे तो स्पीड थोड़ी फास्ट हुई हुई है। हर रोज कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, हर रोज हर रोज। तो इट इज फास्ट। तो जितनी कलयुग की अति को जाने की स्पीड बढ़ेगी, उतने उससे ज्यादा हमें सत्ययुग की स्थिति बनाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये कलयुग का असर हम पर आ जाएगा। ठीक है, फोटो खींची सबने अपनी? पक्का पक्का? तो अगली बार कोई बुरा लगे कुछ और मन रोए, ऐसा बोला ऐसा बोला, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, प्यार से अपनी फोटो निकालना और बोलना ये हर्ट किसने क्रिएट किया? मैंने। फॉरगिव कौन करेगा? मैं। लोग गलत कर सकते हैं, और वो भी वो गलत नहीं है, वो अपने नजरिए से वो सही कर रहे हैं, वो अगला हम शाम को देखेंगे। लेकिन लोग हमें धोखा भी दे सकते हैं, लोग झूठ भी बोल सकते हैं, लोग हमारा नुकसान भी कर सकते हैं, लोग हमारे साथ गलत भी कर सकते हैं, लोग हमारे बारे में गलत भी फैला सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या वो यहां घुस सकते हैं? बुद्ध फिंगर है, क्या वो यहां घुस सकते हैं? नहीं। तो यहां जो थॉट्स चलेंगे उसका क्रिएटर कौन? उसका क्रिएटर कौन? उसका मैं। बस इतना पकड़ के रख लो, एंड वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इमोशनल इंडिपेंडेंस। और जैसे ही जीवन डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस पे जाता है, हेल्थ शुरू हो जाती है। जैसे फिजिकल अगर डिपेंडेंसी हो, रेलिंग पकड़ के चलना पड़ रहा है, किसी से मदद लेनी पड़ रही है, तो हमें साइन है ना कि मैं कमजोर हूं, शरीर कमजोर हूं। हम ये नहीं कहेंगे उनकी गलती में, बोले मेरा शरीर कमजोर है, आई एम नॉट हेल्दी हियर फिजिकली। लेकिन हमने वो नहीं कहा, हमने कहा वो गलत नहीं, हम कमजोर। और वो जो गलत कर रहे हैं वो खुद कमजोर हैं ही, लेकिन उनकी कमजोरी को देखकर हमें कमजोर नहीं होना है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, जो गलत कर रहा है वो कौन सी साइड पे है? दो साइड थी ना, दो टीम चल रही है। कौन सी दो टीम्स हैं? कलयुग और सत्ययुग। जो गलत कर रहा है वो कौन सी साइड पर है? कलयुग। हम कौन सी साइड पर है? गलती से भी, सपने में भी। किधर नहीं जाना? बस जिसने ये कर लिया, बैटरी चार्ज चार्ज चार्ज, इजी। देखो कितना साइलेंस करेंगे, वो भी यहां साइलेंस करेंगे तो ट्यूसडे को जाने के बाद क्या करेंगे हम? इजी नहीं है। सात संस्कार जो है ना वो बनाने नहीं है, वो हमारे हैं। इंग्रेडिएंट बाजार से लाना नहीं है, वो आत्मा का गुण है, आत्मा की नेचर है। आत्मा को सिर्फ उसको कर्म में यूज करना है, यूज करना है। अब आंख बंद करो एक सेकेंड, और लास्ट जब गुस्सा किया था वो सीन को सामने लेकर आए, लास्ट जब गुस्सा किया था उस सीन को सामने लेकर आए। सामने वाले ने क्या किया, किस तरह से बात की, क्या व्यवहार किया, और मैंने कैसे रिएक्ट किया। उनका बिहेवियर भी देख लें और अपना भी देख लें। अब अपने ऊपर फोकस करें कि सेम बिहेवियर अगर अगले हफ्ते फिर आएगा, डू आई हैव अनदर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, मैं एक अलग तरह से उस सीन में रिस्पॉन्ड कर सकती हूं आत्मा, और अपने आप को वैसा करते हुए देखें। स्टिमुलस सेम रहेगा, रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। जिस जिसको दिखाई दे रहा है कुछ और, वो हाथ उठाएं, क्यों दिख रहा है कि कोई और तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हाथ उठाएं। बस आंखें खोलो, दैट्स ऑल, इट्स इजी। स्टिमुलस सेम था लेकिन हमारे पास एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने का तरीका था। जब हम रोज सेंटर जाते हैं ना, हम हर रोज सुबह ये स्टडी करते हैं, हर रोज ये स्टडी करते हैं, हर रोज ये स्टडी करते हैं, तो उसका असर 24 घंटे में कुछ रहता है तो 10 में से 5-6 बार तो बच जाते रिएक्ट करने से। अभी भी 3-4 बार रिएक्ट कर देंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे 5 बार बचते हैं, फिर धीरे धीरे 7 बार बचते हैं, फिर धीरे धीरे 9 बार बचते हैं, 6-6। लेकिन अगर नहीं करेंगे, वायुमंडल असर कर देगा, तो 10 में से 10 बार रिएक्ट करेंगे। सो चॉइस इज आवर्स। इसलिए ये नहीं कहना टाइम नहीं है, बोलो प्रायोरिटी यही है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना। और आपका अपने आप को स्ट्रांग बनाना, आपकी वाइब्रेशन हर बच्चे को जा रही है। आप यहां बैठे हैं, आपके सामने 30 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, आप सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हो उनको, आपकी वाइब्रेशन उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। अब तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो आपसे ज्यादा पढ़ के आ जाएंगे क्लास के अंदर, उधर सामने सामने ऐसे करेंगे और सारी डेटा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हम क्या पढ़ाएंगे? इस समय एक अलग लेवल की पढ़ाई चाहिए होगी। उनके पास इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी, लेकिन जितनी उनकी डिपेंडेंसी उस पे भी बढ़ती जाएगी, उतनी उनकी स्पिरिचुअल और इमोशनल हेल्थ क्या होती जाएगी? और नीचे जाएगी। तो इस समय एक पेरेंट का रोल, इस समय एक एजुकेटर का रोल, सिर्फ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल नॉलेज देना नहीं है। इस समय जो उनको चाहिए वो देना है, और वो क्या है? स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, वायुमंडल। उनकी इंटेलिजेंस तो डेवलप हो जाएगी, उनकी इंट्यूशन को कौन डेवलप करेगा? उनको इन्फॉर्मेशन तो सारी मिल जाएगी, लेकिन परिस्थिति आने पर कैसे स्टेबल रहना है वो शक्ति कौन देगा? कोई दे सकता है? हाँ, वो देंगे जो उनके आसपास रहते हुए एक हायर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। लाखों लोग जो सेंटर पर आते हैं, किसी ना किसी के पेरेंट हैं, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, कोई ना कोई स्कूल के क्लास के टीचर हैं। उनका एक का परिवर्तन अनेकों की शक्ति बन जाता है। यू बिकम अ रेडिएटर ऑफ पावर हाउस। तुम आप शक्ति स्तंभ बन जाते हैं अपने घर के। आपके घर में कोई भी संकट आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, एक जना चाहिए उस घर में जो बिल्कुल कैसे रहेगा, स्थिर एंड स्टेबल। एक, वी नीड वन इन एवरी हाउस। हर घर में एक चाहिए। तो इसलिए अपना अगला ब्लेसिंग लिख लो, मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूं। दैट इज हु वी आर गोइंग टू बिकम। अगर सारे भी पैनिक कर जाए ना, एक अगर स्ट्रांग रहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा सब। लेकिन जब पूरा परिवार ही पैनिक कर जाता है तो फिर छोटी बात भी बहुत बड़ी होती है, और अगर एक शक्ति स्तंभ बन जाए तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज इतनी स्टडी करते हैं जो भाई बहने आते हैं, और रोज मेडिटेशन भी करते हैं, तो बातों में तो स्थिर ही रहते हैं मेजोरिटी। लेकिन जो जीवन की सबसे बड़ी सीन भी आती है, और वो होती है किसी फैमिली मेंबर का शरीर छोड़ना, उस परिस्थिति में भी आप देखेंगे ना बिल्कुल स्थिर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है हमें। उस आत्मा को जो आगे अपनी जर्नी पे जा रही है, उसको प्यार और शक्ति और दुआओं से भेजना है। तो जो डेथ में स्टेबल रह जाए वो जीवन की बाकी चीजों में स्टेबल रहेगा। लेकिन वो क्यों होता है? रोज की स्टडी, रोज की स्टडी, रोज की स्टडी। क्योंकि ज्ञान और योग से क्या हो जाता है, हम स्व अर्थ सोचने की बजाय ऐसे बनने लग जाते हैं। जब डेथ होती है फैमिली, हम कहते हैं हमारा क्या होगा, वो तो चले गए, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, इट्स ऑल अबाउट मी, दिस इज अटैचमेंट। और प्यार कहता है उनको क्या देना है। तो जो आत्मा शरीर छोड़ के आगे जाती है उसको क्या देना होता है, हमें क्या देना होता है? एक मिनट यहां उंगली रखो और निकालो, आत्मा शरीर से निकल गई, आगे जाओ, ऐसे करो, आगे जाओ, पीछे मुड़ के देखो अपने घर को, क्या देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे? सब लोग कैसे हैं, कैसे हैं सब लोग, घर कैसा चल रहा है, कैसे हैं बताइए, कैसा देखना चाहेंगे? सब स्थिर है, नॉर्मल है, हर एक हैज टेकन चार्ज ऑफ लाइफ, घर ठीक चल रहा है, यही देखना चाहेंगे ना? हर एक आत्मा यही देखना चाहती है। लेकिन क्या हम उनको वो दिखा पाते हैं? और हम कहते हैं आप कैसे चले गए, वापस आ जाओ, हम आपके बिना जिएंगे कैसे, नहीं आपको आना ही पड़ेगा। वो आत्मा आगे कैसे जाएगी अपनी जर्नी पर, हाउ विल दे गो? तो दिस इज लव। लव मीन्स उनके लिए मुझे क्या करना है, अटैचमेंट मीन्स मेरा क्या होगा। तो हाथ कैसा बन रहा है, हाथ कैसे बनता जा रहा है ज्ञान और योग से, हाथ कैसे बनता जा रहा है, देने वाला देने वाला आते, छोटी छोटी चीजों में देने से लेके बड़ी सीन में देना। बिकम अ गिवर ऑफ प्योरिटी पीस एंड पावर, रेडिएटर। और जैसे ही संस्कार बदलना शुरू हुआ, मेरा पहले अपना संसार बदलना शुरू हो जाएगा, मेरी फिजिकल हेल्थ बेटर होने लग जाएगी, मेरे रिश्ते बेटर होने लग जाएंगे, बहुत सालों सालों की गांठें खुल जाएंगी। प्रोफेशनली तो एक्सेल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पर्सन ही चेंज हो गया। तो हर स्टेप पर चेंज आएगा। इधर का एक चेंज हर स्टेप पर चेंज लाता है, संस्कार का एक चेंज संसार पर चेंज लाता है। और इसीलिए अगर आप देखें पिछले 25-30 सालों में संसार बहुत ज्यादा बदल गया, क्योंकि संस्कार बदल गए। कौन कौन स्कूल में तब था जब स्ट्रेस वर्ड नहीं था? सो दिस इज नॉट हिस्ट्री, नो, ये हमारे जीवन काल की चीज है। तो जब हम स्कूल में थे स्ट्रेस वर्ड नहीं था, डिप्रेशन क्या होता है पता नहीं था, कैंसर, रेयर 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 अगर किसी को हुआ तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती थी। हार्ट अटैक कौन सी एज में होता था? हार्ट अटैक कौन सी एज में होता था? 70, 80। डिवोर्स कितने होते थे? ड्रग एडिक्शन कितनी थी? ऐसे लगता था कहीं और होती है ये, इतनी सुनी थी सिर्फ। ये हमारा संसार था, हिस्ट्री में नहीं, हमारे जीवन काल में ये हमारा संसार था। कितने साल पहले? 25-30 साल पहले। 30 इयर्स में संसार बदल गया। बदला कि नहीं फास्ट? कितना बदला? स्ट्रेस नॉर्मल, आई एम डिप्रेस्ड नॉर्मल, डिप्रेशन बढ़ता गया, हार्ट अटैक 20s की एज में होना शुरू हो गया, डिवोर्स तो सोशल मीडिया पे लिखते हैं आई एम सेपरेटेड, एडिक्शन स्कूल के लेवल से स्टार्ट होने लगी। 30 इयर्स में पूरा संसार बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि 30 इयर्स में संस्कार बहुत फास्ट बदले। 30 इयर्स में संस्कार बहुत फास्ट क्यों बदले? क्योंकि 30 इयर्स में सडनली कंटेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करके आ गया। तो जब हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं था ना, तब हमारे पास टीवी और फोन भी नहीं था। तो आप एक ग्राफ बनाओ, जैसे फुल कनेक्शन है इसका। फोन नहीं था, टीवी नहीं था, फिर पहला टीवी आया, हफ्ते में एक एपिसोड देखते थे, वो भी सात्विक सात्विक हुआ करता था। फिर उनका तो बिजनेस है, फिर उन्होंने कहा अरे ये तो अपना सारा काम छोड़ के देखने लग जाते हैं, तो फिर हफ्ते में एक क्यों करें। फिर उन्होंने रोज का एक कर दिया, फिर उन्होंने उसको ऑनलाइन कर दिया। अब रोज का एक करेंगे तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर धोखे डाले, चीटिंग डाली, बिट्रेयल डाला, चीखना चिल्लाना डाला, सब डाला। जब तक हफ्ते में एक एपिसोड आ रहा था, हंसते खेलते वाला आ रहा था। तो किसी और का बिजनेस संसार को बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि हम उसके अडिक्ट होकर अपने संस्कार को बदल दिया। तो इट टेक्स ओनली 30 इयर्स टू चेंज फ्रॉम देयर टू हियर, एंड नाउ इट विल टेक वेरी फ्यू इयर्स टू चेंज फ्रॉम दिस टू अ सत्ययुग। तो कलयुग किसने बनाया? कलयुग किसने बनाया? बोलो मैंने। हमने नहीं बोलेगा, सबने बनाया नहीं। कलयुग किसने बनाया? मैंने। फिर कलयुग को पिछले 30 सालों में घोर कलयुग किसने बनाया? मैंने। तो सत्ययुग भी कौन बनाएगा? मैं। बस उंगली अपने ऊपर रखते जाएं, इमोशनल हेल्थ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। चले सीधा होकर बैठे, छोटी सी एक्सरसाइज फिर से करेंगे। कम टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल बींग। हर सिचुएशन में स्थिर एक रस, वो परिस्थिति है मेरी स्वस्थिति, एक रस अचल। कहिएगा अपने आप से, मैं सत्ययुगी आत्मा हूं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूं, मैं परिस्थिति को प्रभावित करके परिस्थिति को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता। याद दिलाइए अपने आप को, मैं कौन? मैं परमात्मा का फरिश्ता, सबको सुख देने वाला, सृष्टि को परिवर्तन करने वाला, अपने सत्ययुगी संस्कारों से संसार को सत्ययुग बनाने वाला, भारत को
स्वर्णिम भारत बनाने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। इसी साइलेंस में बैठेंगे हम, ये समय किसी और से बात करने का नहीं। अपनी चेकिंग करें, कौन सी थॉट चेंज करनी है, कौन सी पुरानी बातें डिलीट करनी है, किसके साथ के रिश्ते को चेंज करना है, किसके साथ के बिहेवियर को चेंज करना है। ये कुछ क्षण अपने लिए यूज करें, फिर हम इसको शाम को 5 बजे के सेशन में और डिटेल मिलेंगे। लेकिन साइलेंस, दूसरा दीदी आएंगी स्टेज पर, तब तक हम साइलेंस में अपने कंसंट्रेशन को बना के रखना है, उस स्थिति को बना के रखना है और अपना इनर वर्क, होमवर्क अंदर करते रहना है।